खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो के क्या है। हम पिछले दिनों से इसी बात पर गौर कर रहे हैं कि हमें गौर से चलना है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। हमें नादान नहीं बल्कि दना बनना है, और दना बनने का वह जरिया बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। इम्साल जब उसका पहला बाब देखते हैं, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, यानी कि खुदा का एहतराम खुदा की इज्जत हिकमत बख्शती है, क्योंकि खुदावन खुदा से हर तरह की हिकमत आती है। इस दुनिया में दो तीन किस्म की हिकमतें हैं, हमें उन हिकमतों को समझकर दना नहीं बनना बल्कि खुदाई हिकमत को समझ कर दनाई हासिल करनी है। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया की हिकमत नहीं बल्कि आसमानी खुदा की उस हिकमत को जो हम सबको बख्शी गई है उससे मोहब्बत करनी है। इसलिए मेरे साथ एक हवाला निकालें इसी तलक से। नया अहदनामा यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दो बाप हम उसकी 12वीं आय से इस हिस्सा को पढ़ेंगे, और इस हिस्से में खुदा का बंदा यूहन्ना जब खुदावंद यीशु मसीह की उन इब्तदाई बातों को सच्चाइयों को लिखता है, याद दिलाता है, तो कहता है 12वीं आयत में, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। किसके नाम से? यीशु मसीह के। बच्चों को लिखता है जो मसीह में अभी बच्चे हैं। ऐ बुजुर्गो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। इब्तदा से कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम खुदा था। और वो बुजुर्गों को कहता है जो उस वक्त कलीसिया में मुकर्रर थे, कहता है कि तुम सब जान गए हो। ऐ जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालब आ गए हो। किस पर? शरीर पर, अबलीस पर, उसकी तमाम मकारियों पर। वो कहता है तुम गालब आ गए हो। लेकिन सवाल बहुत दफा है कि क्या हम गालबाना जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐ लड़को मैं तुम्हें इसलिए लिखता मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। फिर कहता है ऐ जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहे और तुम उस शरीर पर गालब आ गए हो। वो कहता है खुदा का बंदा यूहन्ना कि तुम खुदा के कलाम के वसीला से किन किन को कहता है? बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, जवानों को, लड़कों को, और फिर जवानों को वो कहता है कि उस शरीर पर गालब आ गए हो। इसलिए 15वीं आयत, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं, यानी कि चले नहीं, यानी कि ना समझों की तरह नहीं, जिसे बाइबल मुकद्दस जबूर बत्ती में जब हम गाते हैं तो ना हो कोड़ियाँ खचरा मगर तू, कि कुछ भी नहीं समझ उन्हां नूं, लाम लगामा तो बगैर उन्हां दी कोई भी कि कहंदे के दुरुस्तगी नहीं। सो जैसे उनके लिए लगामे हैं, हमारे लिए खुदा ने हमारी हदबंदी की है, हमें बताया है कि सच और झूठ क्या है, तारीकी और नूर में फ़र्क सिखाया है, अब्दियत और आरजी, और या कह सकते हैं कि जो के ज़मीनी है उसमें फ़र्क बताया है। इसलिए 15वीं आयत में कहता है, तमाम लोगों को गिनकर ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। दुनिया की चीज़ों से हमें मोहब्बत नहीं करनी। कौन सी दुनिया की चीज़ें हैं जिनसे हमें मोहब्बत नहीं करनी? दुनिया लालच से भरा हुआ है, क्या हमें उससे मोहब्बत करनी है? नहीं। दुनिया बदकारी से भरी हुई है, क्या हमें बदकारी से मोहब्बत करनी है? नहीं। दुनिया के बीच बहुत से ईमानदार हैं, क्या हमें उससे नफरत करनी है? नहीं, उनसे मोहब्बत करनी है। ईमानदारों को ईमानदारों से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। और 16वीं आयत लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, ये किसकी तरफ से है? आसमानी बाप की तरफ से नहीं। किसकी तरफ से है? दुनिया की तरफ से। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाएंगी, लेकिन जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। सो पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह। और आगे क्या लिखा है? कि खुदा की मर्ज़ी को समझो के क्या है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमने कल थोड़ा सा दौरे हाजरा पर, यानी कि मौजूदा दौर पर गौर की थी कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अखबार में देख लें, टीवी पर देख लें, इर्द गिर्द मुल्कों में देख लें क्या हो रहा है। दिन बुरे हैं, इन बुरे दिनों में हमें खुदावंद की मर्ज़ी को समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, अगर शादीशुदा हैं मेरी मेरी बीवी के लिए, अगर बच्चे हैं मेरे और मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए, खुदा की मर्ज़ी क्या है। इसलिए कहता है पालूस रसूल 17वीं आयत, इस सबब से नादान ना बनो। वक्त बुरा है इसलिए नादान ना बनो। याद है सदूम और गमूरा में जब वक्त बुरा था तो लूत के ख़ानदान ने नादानी की राह नहीं बल्कि दनाई की राह को अपनाया था। उन्होंने क्या किया था कि लोग उस वक्त बुतप्रस्त, ऐशप्रस्त, हर तरह के वो बदकारी में फंसे हुए थे, और उन्होंने उनकी तरह ज़िंदगी ना गुजारी। क्या किया था लूत अपने दिल को, हर रोज़ उनकी बदकारी को देखकर, उनकी तमाम घनौनी बातों को सुनकर अपने दिल को क्या रखता था? शिकंजे में। याद है आपको? नहीं तो आए फिर देखें। नया अहदनामा, यहन्ना पत्रस का पहला खत, नहीं जी दूसरे पर चलें जी, पत्रस का दूसरा आम खत, उसका दो बाप उसकी 7 आयत से, यहाँ पर लूत के बारे में जिक्र किया गया है। पत्रस रसूल इस सच को लिखता है कि उस दौर में क्या हुआ और आसबाज लूत ने लूत को और आसबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिक था। रास्तबाज लूत कहा गया है, यानी कि बेगुनाह जो बेऐब था उस ऐब से भरे हुए वक्त में। क्या लिखा है? रास्तबाज लूत को बेदीनों, बेदीनों यानी के जो बदियों से भरे हुए थे, जिनका एतकाद खुदावंद खुदा पर नहीं था। क्यों उनको बेदीन कहा गया है? क्योंकि जब खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने खुदावंद से सिफारिश करना शुरू की कि शायद 50 हों, शायद 40 हों, शायद 30 रास्तबाज हों और शायद 10 हो, तो खुदावंद खुदा ने कहा कि वहां पर 10 भी ना मिले। तो क्यों कहा गया है बेदीन? यानी कि उन्होंने खुदावंद खुदा को कबूल नहीं किया था और उन बेदीनी के बायस क्या करते थे? नापाक चाल चलन से दिक था। लूद उनमें रहता था। बहुत दफा हम कहते हैं कि खुदावंद खुदा ये कैसा दौर आ गया है, अभी इससे भी भयानक दौर आएगा। दुआ करें कि कलीसिया जहां तो अपना मकसद पूरा करे मसीह की मनादी करने का, और यहां फिर कलीसिया जब अपना मकसद पूरा नहीं करेगी, कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर वो जो खुदावन खुदा ने मुकाशवा की किताब के मुताबिक ईमानदार रखे होंगे वो जाकर पूरी दुनिया में बगैर खौफ के मनादी करेंगे, और जब लोग उनको कत्ल करेंगे और जब लोग उनको कबूल करेंगे तो कलीसिया का वो मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन आज कलीसिया पर खुदावन खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, सिर्फ पासबान पर नहीं, पूरी कलीसिया पर, मर्दों पर, औरतों पर, खादमों पर, खादमाओं की भी जिंदगी पर। हम सब पर ये हुक्म है कि जाकर यीशु मसीह की मनादी करें, और आज के दौर में मनादी सादा तौर पर हो सकती है हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी अगर हम कहें कि हम मसीही हैं और फरेब दें तो फिर हम मनादी कर चुके। हम कहें कि हम मसीही हैं और झूठ बोलें, फिर हम मनादी कर चुके। इसलिए हमारी ज़िंदगी, लूत को कहा गया है कि लूत रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रहाई बख्शी, चिनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को सकंजे में खींचता था। देखता था, सुनता था। बहुत दफा हम जब कहीं पर कोई बुरा काम होता देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होते देख रहे हैं, तो हम वहां से टलने की बजाय कहते हैं खड़े होकर तमाशा देखिए। लूत ऐसा नहीं करता था। वो उनके बेदीन कामों को देखकर जब लोग गलियों में, चौकों में बदकारी करते थे, अगर कभी मौका मिला तो लूत की एक इंग्लिश में फिल्म बनी है, उन्होंने सही तौर पर उन्होंने बयान किया है कि कैसी बदी थी जो बर्दाश्त से बाहर है। वो उनको देखता था, उनके कामों को सुनता था, उनके उन नारों को सुनता था जब वो खुदा पर लानत करते थे, जब वो खुदा पर कीना करते थे, जब वो कहते थे कि कोई खुदा नहीं, हम खुद ही खुदा हैं। तो खुदा ने जब उनकी बदकारी को देखा तो तब खुदावन ने इब्राहिम को कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि उस शहर को, उन दोनों शहरों को, सदूम और अमूरा को, गमूरा को क्या करूं? बर्बाद करूं। और नौवीं आयत में लिखा है तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकालने और बदकारों को बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। इसलिए हम ईमानदारों को समझने की ज़रूरत है, वक्त को गनीमत जानने की ज़रूरत है, अहम जानने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी छोटी सी झलक चल रही है जिसे कहते हैं कि फिल्म से पहले छोटा सा टेलर। हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, मनादी का काम। जैसे मैंने कहा था कि एक बहुत ही पुराने खुदा के खादम ने इस कहावत को कहा था, ये सच है कि खुदा के कलाम की मनादी कर, अगर ज़रूरत पड़े तो लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर, यानी कि हमारी ज़िंदगी खुली अंजील होनी चाहिए। मैं अंजील हूँ अपने पड़ोसी के लिए, जब वो मुझे देखता है तो वो मुझे पढ़ता है, जब वो मुझे सुनता है तो वो खुदा का कलाम सुनता है। सो हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी उठते बैठते चलते खुदावन की लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ना कि जब हम ख्वाहिश करें तब ही कि अब मैं अच्छा महसूस करता हूं, अब मैं खुदावन के बारे में बात करूंगा, वरना नहीं। इसलिए पालूस रसूल कहता है, वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। सो इस सवाल को हर रोज़ हम सबको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की मर्ज़ी क्या है। मेरे साथ एक हवाला देखें, हम इस पर ख़त्म करेंगे। मरकज की इंजील उसका 3:35। मरकज की इंजील 3:35। यहाँ पर खुदावंद यसु मसीह कलाम सुना रहे हैं, भीड़ है, लोग सुन रहे हैं, और खुदावंद यसु मसीह के ख़ानदान में से उसकी माँ उसके भाई आए हैं और बुलावा भेजा है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। तो खुदावंद यसु मसीह ने 35वीं आयत में तमाम लोगों को मुखातब करते हुए ये बात कही है, 35वीं आयत में, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। खुदा की मर्जी पर चले, ये खुदावन खुदा की ख्वाहिश है कि जो कोई मेरे बाप आसमानी की, मेरे खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। सवाल ये है अब कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी हमें बहुत सी सादा सी बातों में नज़र आती है, तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना कर, ये खुदा की मर्जी है। तू खुदावंद अपने खुदा की, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपने सारे दिल से मोहब्बत कर, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदावंद खुदा की ख्वाहिश है, ये खुदावंद खुदा के दिल की खुशी है। मर्जी के लिए तकरीबन 5 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं नए अहदनामा में, मर्जी, ख्वाहिश, खुशी। खुदावन को खुशनूदी होती है या खुदावन को इससे क्या मिलती है, राहत मिलती है। सो खुदावन की खुशी, खुदावन की मर्जी इसी बात में है कि खुदावन के लोग उसकी मर्जी को पूरा करें, ना कि सिर्फ पढ़ने वाले बने, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पूरी होगी, हवा के परिंदों में, ज़मीन के हर रेंगने वालों में, और हर तरह के पहाड़ों और उसमें बसने वाले जानवरों में, ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पूरी होती है, लेकिन क्या ज़मीन के रहने वालों की ज़िंदगी में। तो हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, मुझे आपको अपनी अपनी ज़िंदगी पर, कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है।